ओम शांति। अभी हमारे बीच में भाई जी जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है खुल जा सिम सिम। अब खुलने के बाद क्या मिलेगा और क्या पाना है, कैसे पाना है और कैसे सिम सिम करके खोलना है, इस टॉपिक को भाई जी स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति। एक बहुत प्रसिद्ध किताब वर्तमान में सब जगह पर पढ़ी जाती है, उसका नाम है एल्केमिस्ट, पाउलो कोहेलो द्वारा लिखित। इस किताब में एक चरवाहे का वर्णन है जिसका नाम है सैंटियागो। ये भेड़ बकरियां चराता है। एक बहुत खंडहर सा चर्च है, वहीं आसपास कहीं रहता है। और एक रात वो एक स्वप्न देखता है। वो स्वप्न बहुत ही अजीबोगरीब होता है और उसे समझ नहीं आता है ये स्वप्न का क्या अर्थ है। और वहां पर उसे कोई मिलता है और उसे बताता है कि जो तुमने स्वप्न देखा वो कोई साधारण स्वप्न नहीं था। इसका अर्थ ये होता है कि दूर कहीं मिस्र इजिप्ट में जो पिरामिड है वहां तुम्हें जाना है और उस पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। तो वो सैंटियागो जो होता है बहुत उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है कि मुझे जाना है, कहानी स्पेन की है। और वो वहां से निकल पड़ता है अफ्रीका के लिए। इस किताब में उसकी ये यात्रा है, इसका वर्णन है। इस यात्रा में उसे कई लोग मिलते हैं। सबसे पहले जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचता है और जहां ठहरता है कुछ डाकू कुछ चोर आ जाते, सारा सामान लूट कर चले जाते। अब उसके पास कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो आया था अपना सब कुछ बेच बाज कर, पर जो कुछ उसके पास धन था सब लुट जाता है नए देश में। तो वो सोचता है यहां मैं नौकरी करूं। एक साल कहीं नौकरी करता है और एक साल के बाद तक तो भूल ही जाता है मैं निकला किस लिए था। और फिर कोई याद दिलाता है तब उसे फिर से जागरण होता है कि मुझे उस इजिप्ट के पिरामिड में जाना है। फिर अपनी यात्रा आरंभ करता है, फिर चलना चालू करता है। फिर बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई है, कोई दूसरा मिलता है कोई तीसरा मिलता है। एल्केमिस्ट नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका प्रोफेशन एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट अर्थात किमियागार, जो रसायन तैयार करते हैं और नई चीजें बनाते हैं। तो ऐसे एल्केमिस्ट भी मिलता है और पूरी किताब का सार उस एल्केमिस्ट जो एक व्यक्ति होता है उसके मुख से निकलता है। वो कहता है जब तुम किसी चीज को चाहोगे, दिल से चाहोगे, जिसको उन्होंने कहा पर्सनल लेजेंड, सारी कायनात षड्यंत्र करेगी तुमसे वो वस्तु मिलाने की, कॉन्स्पायर करेगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए और दिल से चाहिए और तुम दिल से उसके पीछे लग जाओ तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करेगी उस चीज तक पहुंचने के लिए। तो फिर से अपनी वो यात्रा चालू करता है और बहुत सारी चीजें उसमें और दिखाई है और अंततः उस मिस्र के पिरामिड के पास वो पहुंचता है और वो खोदता है और वहां पर खजाना होता है। पर वहां पर दूसरे डाकू आ जाते हैं और वो सारा खजाना लूट लेते हैं और उसे कहते हैं तुम कहां से आए हो। तो वो कहता है मैं फला फला जगह से आया हूं। तो उसमें से एक कहता है अरे यहां जो खजाना है ये तो कुछ भी नहीं, हमने भी एक स्वप्न देखा है और हमने स्वप्न में देखा कि तुम जहां रहते हो ना वो जो खंडहर सा चर्च है उसी के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। इस बीच में दिखाया उसका किसी से प्यार भी हो जाता है और फिर वो लौट कर वापस आता है। इतनी लंबी यात्रा उस खजाने की तलाश में, पर वो असली खजाना नहीं होता है। वो वापस आता है उसी चर्च के पास जहां वो रहता था, उसको खोदता है और बहुत सारा खजाना उसको वहां मिल जाता है। और फिर दिखाया वो खुशी से रहता है। जिस खजाने की तलाश में वो निकला था वो कहीं बाहर नहीं था, वहीं था जहां वो रहता था, पर उसने स्वप्न में देखा वो कहीं और है, और जहां पहुंचा वो लोगों ने बताया कि हमने स्वप्न में देखा वो यहां है। वास्तव में खजाने हमारे ही पास है, भौतिक जगत में और संसार में और बाहर के जगत में कोई खजाना नहीं। जो आध्यात्मिक दरिद्रता आ गई है, स्पिरिचुअल पावर्टी, उससे यदि मुक्त होना है तो खजाना इधर अंदर गड़ा हुआ है। ये खजाना यदि हमें मिल गया तो फिर हमें किसी दूसरी आत्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा चाह आत्मा को दूसरों से होती है मांगने की। एक है स्थूल चीजें और फिर है सूक्ष्म। द्वापर से दिखाया है ब्राह्मण किसी के घर जाते तो बहुत सारा सामान लेकर आते, जनेऊ पहने हुए, पेट बड़ा हुआ, भोजन में जाएंगे तो बहुत सारा खाएंगे और साथ में लेकर भी जाएंगे, वो किसका यादगार है? तो मांगने का स्वभाव ब्राह्मणों का रहता है, परंतु यहां सूक्ष्म मांगने की चाह होती है, दूसरों से, साथियों से, बड़ों से, छोटों से, स्टूडेंट से, बाहर वालों से, मधुबन वालों से। किस चीज की? पहला प्रेम, दूसरा हमें प्रेम करे, दूसरा केयर, हम बीमार हैं, दूसरा हमें देखे, हमें पूछे हम कैसे हैं, तबीयत अब कैसी है, सुबह बुखार था अब कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई ना पूछे तो दुख, हम कहेंगे नहीं हमें पूछो, पर हम चाहते हैं वो पूछे। फिर है तीसरा अटेंशन, हमारे तरफ ध्यान। पूछना अच्छा है पर वो ना पूछे तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हम बीमार हैं और हमारे कमरे में जो है वो पूछता ही नहीं, फिर क्या करेंगे? कोई पूछे, ध्यान रखे, केयर करे तो बहुत अच्छी बात, पर कोई पूछे ही नहीं तो हम तो दुखी हो जाएंगे ना। तीसरा है अटेंशन, हमारे तरफ कोई ध्यान दे, ध्यान रखे। चौथा है पावर, हमें भी कोई शक्ति दे, ये जो कमजोरी अनुभव हो रही है मानसिक स्पिरिचुअल, कोई शक्ति दे। हमारा सेंटर बन रहा है सकाश भेजो, जगह मिल नहीं रही है सकाश भेजो। दादी जान की लंदन में थी, एक बहन अनुभव सुना रही थी, जगह नहीं मिल रही थी, बहुत पहले की बात। तो सारी बहनें मिलकर योग कर रही थी स्थान के लिए, तो दादी आई, क्या कर रही हो? स्थान के लिए योग। दादी ने कहा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, आप ही मिलेगी। शक्ति दे दो, सकाश दे दो, पावर दे दो, सेंटर स्टूडेंट बढ़ जाए। फिर है रिस्पेक्ट, हमें सम्मान दे दो, अनस्पोकन डिजायर्स, अप्रगट इच्छाएं, हमने कहा नहीं किसी से पर चाहिए, क्योंकि देते हैं तो खुश होती है आत्मा, रिस्पेक्ट। फिर है सिक्स्थ प्रेज, एप्रिसिएशन, स्तुति, प्रशंसा, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, हम भी कुछ कर रहे हैं, हमने भी उन्नति की, हमारे भी ऐसे ऐसे हैं। फिर है धन, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बाबा ने जगदीश भाई से कहा था, सेंटर में तीन चीजें हो, किसी भी विकारी की दीवार से सेंटर टच ना करे, ऐसा सेंटर दिल्ली में बनाओ, किसी भी विकारी का एक पैसा भी उसमें ना लगे। ये दो महत्वपूर्ण बातें। तीसरी बात दिल्ली के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो, छोटा रहा चलेगा, पर भीख नहीं मांगनी। उदार चरिता नाम तू, उदार चित्त तो धन चरणों में आके गिरेगा, और जो पकड़ के है क्लोज फिस्टेड वो और कम होते जाएगा, और कमी रहेगी। धन न मांगने का संकल्प लाएगा उसको। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअल फाइनेंस उल्टा है, हाथ खाली छोड़ दो तो गिरेगा चरणों में। पालना करनी है विशेष कुमारियों की और कुमारों की, उसमें भी कुमार विशेष, दो ही चीजें चाहिए उनको, कौन सी हो सकती है? स्तुति, भोजन। ये नहीं कह रहे कि रोज, तो ये नहीं कह रहे, परंतु पालना। कोई सेवा करता है या कुछ करता है, उसकी दिल खोल कर स्तुति हो तो वो और सेवा करेगा। हम देखते हैं कहीं कहीं पर कुमार दिन रात सेवा करते रहते हैं, परंतु जरा भी रिकॉग्निशन नहीं है, और वहां पर कम कम होते जाते हैं। फिर दिन रात वो भी सेवा कर रहे हैं, पर उन्हें कोई पूछता तक नहीं, चाय पी लो, भोजन करके जाओ। इसके लिए कहीं कहीं देखा बहुत है, कहीं कहीं बहुत कम है। धन स्वतः आएगा, निरसंकल्प। जब हम ये सोचते हैं ये मेरा है या मैं चलाती हूं, तब चिंता होती है। जादी जानकी ने प्रश्न पूछा था बहनों से, टीचर्स भट्टी, क्या बनना चाहती हूं, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? क्या कहेंगे? तीन में से क्या बनना चाहती हूं, सेवाधारी, निमित्त, कठपुतली? कठपुतली सबसे ऊंची अवस्था है, उसके लिए तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत सेवाधारी से, इंचार्ज नहीं, हेड नहीं, बॉस नहीं, सेवाधारी, कहीं की प्रभारी नहीं, सेवाधारी, और फिर धीरे 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 निमित्त भाव, कि मुझे यहां रखा गया है। वो चाहता है तो किसी और को भी रख सकता था, और मेरे योग्य कई सारे हैं, पर मुझे रखा है, और जिसने रखा है वो हटा भी सकता है। इसलिए निमित्त समझना, निमित्त भाव बहुत बड़ी अवस्था है, और वो इतनी आसानी से भी नहीं आती है। वो केवल इतना कहने से नहीं आता है, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, ये कहना भी निमित्त मात्र कहते हैं। कर मैं ही रहा हूं अंदर से, पर ब्राह्मण परिवार की लोक लाज लज्जा, उसके लिए बाबा करा रहा है, ब्रह्मा कुमारी की आड़ में मैं का पोषण होता है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं नहीं होती तो कहां से होती है सेवा। हम हमेशा उदाहरण देते मोहम्मद रफी का, उन्होंने कहा कि महिमा मेरी नहीं है। अगर वो चाहता तो ये आवाज किसी और के गले में भी दे सकता था। अगर खुदा चाहता तो जो आवाज उसने मेरे गले में डाली है वो किसी और के भी गले में डाल सकता था। इसके लिए मेरी महिमा कहां से? उसने मुझे यहां रखा है। वो चाहता तो किसी और को रख सकता था, और वो अगर भविष्य में रखे तो यहां से जाने का, हटने का, पद से नीचे आने का दुख नहीं, गम नहीं। यह निमित्त है, यह सेवाधारी के ऊपर की अवस्था है। उसके भी ऊपर कोई अवस्था हो सकती है, कठपुतली जिसका मैं ही समाप्त हो गया है, वो कुछ है ही नहीं। ऊपर से रस्सियां लगी हुई है, डोरी, वो छोड़ दे तो वो पिचक जाएगी, उसका कुछ अपना है ही नहीं। यह अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, हाईएस्ट स्टेज, कि जिसमें मैं खो गया। क्योंकि आत्मा ज्ञान में चलते चलते और सेवाएं करते करते अहंकार से भरती जाती है। ज्ञान जबरदस्त अहंकार से भरता है, फिर वो कोई भी ज्ञान हो, और वो आध्यात्मिक ज्ञान हो और वो सत्य ज्ञान हो, तो और ज्यादा अहंकार आता है कि हम जानते हैं तुम नहीं जानते, हम पुराने हैं, पुराने होने का अहंकार, बड़े होने का अहंकार, उम्र में बड़े होने का अहंकार, अनुभव, उम्र, अध्यात्म, एज, एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी, ये तीन चीजें अहंकार से भरती है। हमारे पास अनुभव ज्यादा, हमारी उम्र ज्यादा, हम अध्यात्म में बड़े हैं, और हम सोचते ये छोटी सी कन्या आई है सेवा केंद्र पर, इसे क्या पता। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इसी ब्राह्मण कुल की नहीं है, सेकंड बर्थ भी के है? हमें क्या पता वो क्या तपस्या करके आई है। हो सकता है वो महातपस्वी आत्मा है, वैराग्य से भरी हुई, ज्ञान की ऐसी गहराई उसमें है, ऐसी प्यूरिटी उसमें है कि जिसे इच्छा अपवित्रता की अविद्या है, ऐसी प्यूरिटी लेकर आई हुई है। और हम यदि कहे कि हम बड़े और ये छोटी, तो क्या कहेंगे? धन, धन की बात हम कर रहे थे, आप ही आएगा, नहीं आए तो चलेगा, झोपड़ी रही तो चलेगा, पर किसी का चाटुकार नहीं बनना है, फ्लैटरर, साइकोफेंसी इंग्लिश में कहते हैं, खुशामद नहीं करनी है किसी की। जो आत्माएं दे रही है वो अपना भाग्य बना रही है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। वो कार, वो जमीन, वो धन, वो पैसा, वो अपना भाग्य बना रही है, इसके लिए हमें उनकी खुशामद चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान ठीक है, जैसे सबके लिए, धन मांगना नहीं, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, दूसरा धन्यवाद करे ये भाव भी नहीं। कल्याण कर दिया, वो चला गया। हम देखते हैं हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, कोई बहुत सीरियस होता है और बहुत कुछ होता है और फिर ठीक होता है और चले जाता है। कोई कोई रिलेटिव ऐसे होते हैं बहुत धन्यवाद करते हैं, कोई कोई कुछ नहीं। जैसे ठीक, नॉर्मल, दोनों प्रकार के हैं। पर हमें ये अंदर से कामना ना हो कि ये हमें धन्यवाद करे। धन्यवाद भी एक कामना है कि दूसरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करे कि आपकी वजह से ये हुआ, हमारा जीवन सुधर गया। हम जीवन दूसरों का सुधारे और भूल जाते, कोई लेना देना नहीं। तो हम बात कर रहे थे खजानों की, खजाने अंदर गड़े हैं, छिपे हैं, और जब वो अनुभव नहीं होते तो हम ये सातों बातों के लिए बाहर, सात आठ बातों के लिए बाहर भागते हैं। कोई प्रेम दे दे, केयर करे, अटेंशन दे, कोई स्तुति करे, कोई शक्ति दे, कोई रिस्पेक्ट दे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करे, धन दे, मदद दे, हेल्प, ये और एक एडिशन है। दूसरे हमारी मदद करे, हमारे ऊपर वाले, हमारे साथी, हमारे नीचे वाले। और एक चीज है अंडरस्टैंडिंग, दूसरे हमको समझे, हमारी स्थिति को, परिस्थिति को, सेवा केंद्र को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी लाइफ को, और उस अनुसार हमारे साथ व्यवहार करे, हमारे प्रति डिसीजन दे। अंडरस्टैंडिंग की भीख, हमें समझो, तुम मुझे नहीं जानते। यहां आज तक किसने किसको जाना है, सबसे पहले ये प्रश्न है। पति पत्नी 40 साल साथ में रहते हैं, पूछो उनको जानते हो क्या, कुछ नहीं, कोई किसी को जानता नहीं। जिसने जूता पहना है उसके पैर में जो कील गड़ रही है, दर्द हो रहा है उस जूते की वजह से, हम वो ही नहीं जान सकते तो उसकी स्थिति और परिस्थिति को कहां से समझेंगे। दूसरों को हम जज नहीं कर सकते, और फिर उनसे ये एक्सपेक्टेशन करना कि आप हमको समझो, दुख होगा, निराशा होगी एज अ रिजल्ट। और एक चीज, इच्छाएं दूसरी हमारी पूर्ण करे, एक्सपेक्टेशन की भीख। हमारी कोई इच्छा है, कोई स्टूडेंट उसको पूरा करे, और बिना बोले पूरा करे तो और ज्यादा खुशी, और बोलकर भी पूरा ना करे तो ज्यादा दुख। इनमें से कोई भी चीज का एडिक्शन यदि है, एडिक्शन लत, आदत, क्योंकि लंबा समय से एक ही चीज सोचा है, वो थॉट पैटर्न क्रिएट हुआ है और उसने संस्कार का रूप लिया है, इसलिए इससे बाहर। शास्त्रों में 9 खजानों का गायन है, तो आज हम देखेंगे वो कौन से 9 खजाने हैं। आप सभी जानते हैं रिविजन, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। हनुमान जी पहुंचे तो जानकी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अष्ट सिद्धियां दी और 9 निधियां दी। 8 सिद्धियां जिसको हम 8 शक्तियां कहते हैं, 9 निधियां, 9 खजाने ब्राह्मण जीवन के कौन से हैं, और वो कौन से मंत्र है कि जो सिम सिम कहते ही वो खजाना खुल गया था अलादीन का, वैसे ये सारे खजाने भी खुल जाए। तो ब्राह्मण जीवन के 9 खजाने हमें अपने अंदर भरने हैं। जब ये अंदर रहेंगे तो बाहर का ये जो भीख मांगना है स्वयं बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो आत्मा तृप्त रहती है, कुछ ना कुछ चाहिए उसे, चाहिए। हमारे पास ओपीडी में 2 बहनें आई थी, दूसरी बहन बता रही थी इस बहन को ठीक करना है। क्या हुआ, इसको 2-2 घंटे में भूख लगती है। इधर मधुबन में जब आते हैं तब सेंटर पे नहीं, इधर क्यों, उन्होंने बताया कि उसके सेंटर की बहन जी एकदम कड़क है, एक एक चीज गिन के रहती है वहां पर, और इसको बिल्कुल खाने को मिलता नहीं वहां पर, कुछ जो भोजन है उसके अतिरिक्त। दमन हुआ है, सप्रेशन, और जैसे मधुबन आते हैं सारे सप्रेशन दूर हो जाता है, सारा दमन, और फिर क्या खाऊं और क्या नहीं, ऐसे हो जाता है उसको। और वहां पर उस परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट कर लिया, जबरदस्ती दमन। किसी किसी को म्यूजिक का बहुत शौक है और सेवा केंद्र पर आ गए, म्यूजिक मतलब उस तरह का म्यूजिक पसंद था, वो अब यहां बंद हो गया। किसी किसी को घूमना फिरना बहुत पसंद था और यहां आ गए, अब वो बंद हो गया। दमन, और फिर अंदर ही अंदर दुख। किसी को कुछ और संसार की चीज पसंद थी, जो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में थी और एकदम ज्ञान मिल गया और फिर यहाँ आ गए, वो दब गया और अभी बीच बीच में से निकलता है बाहर अवसर मिलने पर। अतृप्त इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। किसी को इच्छा है कि कोई भाई स्तुति करे, किसी के कंधे पर सिर रखे तो अच्छा महसूस होता है, पर वहां से लगाव चालू होता है। आत्मा का पतन कितनी सूक्ष्म रीति से होता है। सेवा केंद्र के एक विवाहित भाई जो कि बहुत पक्के ज्ञान में नहीं थे और वो भी मुसलमान, उनसे सेवा केंद्र पर रहने वाली बहन का मोह हो गया, इतना जबरदस्त मोह, और उनका भी हो गया, दोनों का। खत लिखना चालू, पहले पहले गुणों की स्तुति, फिर शरीर की स्तुति, तुम्हारी आंखें सुंदर है, ये सब चालू हुआ। चालू कहां से हुआ था? सेवा, सेवा ही थी। सेवा का नाम, सेवा का संबंध, सम्मान, ये कुमार, ये भाई बहुत अच्छा है, अच्छा सेवाधारी है, अच्छा सहयोगी है, कार देता है, कोई हॉल देता है ढूंढकर भट्टियों के लिए, प्रोग्राम के लिए, बड़े बड़े लोगों से पहचान है। शुरुआत यहां से थी, धीरे धीरे बढ़ते गए। एक समय आया कि उसकी पत्नी आई सेवा केंद्र पर झगड़ा करने के लिए और धमकी देकर गई, खबरदार मेरे पति को अगर तुमने कुछ इसके बाद बात की तो। क्या ये अच्छी बात है? सत्य घटनाएं हैं सारी। कहां से कहां लगा हो पता नहीं चलता है, आत्मा देख ही नहीं पाती। तो नौ खजाने जब खाली होते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, एक खाली स्पेस, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, स्पिरिचुअल वैक्यूम जहां आ जाता है खजानों के अभाव में, वहां विकार आने चालू होते हैं धीरे धीरे, और फिर विकर्म होते हैं सूक्ष्म, पहले मनसा और फिर स्थूल में। ये क्रम है, एम्प्टीनेस, वाइसेस, सिंफुल एक्शन, खालीपन, विकार और पाप। खालीपन आएगा तो ये सब होगा। सबसे पहला खजाना है ज्ञान। पहले नाम गिना देते हैं फिर चर्चा करेंगे। ज्ञान सब जानते हैं, गुण, दूसरा शक्तियां, तीसरा, चौथा समय, पांचवा संकल्प, छठवा खुशी, सातवा पवित्रता, आठवा दुआएं और नौवा पुण्य कर्म। ऐसे ये नौ खजाने। वैसे खजाने अनगिनत है, बाबा ने तो बहुत सारी चीजों को खजाने बताए, संतुष्टता भी खजाना है, ऐसी ढेर सारी लिस्ट है, पर मुख्य ये नौ है। एक एक खजाने को हमको अपने अंदर भरना है। सबसे पहले आते हैं ज्ञान। मुरली सुनना, मुरली पढ़ना, मुरली सुनाना, कोर्स कराना, ये रूटीन एक्टिविटीज समझ लो इसको। बहुत गहरा इससे ज्ञान का कनेक्शन है ऐसा नहीं है। जिसको प्रैक्टिस हो गई है वो सतही कराएगा। जैसे भाषण है, आर्ट है एक, प्रैक्टिस हो गई तो कोई भी टॉपिक दे दो बोलना चालू। 8 बजे उठो, 9 बजे जाकर अमृत वेले पर स्ट्रांग पावरफुल क्लास करा के आओ, ये भी संभव है। सब कहेंगे वाह वाह क्या क्लास थी अमृत वेले पर, आज तक ऐसी क्लास नहीं सुनी। हमको याद है मधुबन में कि आंगन में एक बार एक बहन मिले थे जिनका एंगर मैनेजमेंट पर क्लास था मेडिटेशन हॉल में। क्लास पूरा हुआ और नीचे आए और वो टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक भाई को ऐसा चिल्लाया जबरदस्त, और उधर से जो स्टूडेंट्स निकल के आ रहे, क्या क्लास था, सबने सुनना चाहिए ये एंगर मैनेजमेंट, सब संभव है। टाइम मैनेजमेंट पर एक बहन जी क्लास कराने कहीं जा रही थी, टाइम मैनेजमेंट, ट्रेन से, ट्रेन एक जगह रुकी, वहां उतरे और कुछ खरीदने में लग गए और ट्रेन छूट गई। क्लास कौन सा कराने जा रहे थे? टाइम मैनेजमेंट पर। जैसे भाषण एक आर्ट है, उसका संबंध धारणा से पूरा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान को अंदर धारण करने के लिए एक चीज जो ब्राह्मण परिवार में मिसिंग है वो है चिंतन। मुरली उठाई और पढ़ा, सुना दिया और बीच बीच में एक्सप्लेनेशन, ये खाली ज्ञान नहीं है। अलग अलग विधि से मुरली का चिंतन, गहराई से मुरली का चिंतन, उसमें से वो बातें खींच कर निकालना जो ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। दो शब्द है, एक है सोचना, एक है चिंतन करना। सोचना अर्थात तैरना पानी में, चिंतन करना अर्थात डुबकी लगाना, डूबना। सोच तो सब रहे हैं, क्योंकि मुरली सुनानी है तो हमने पढ़ा उसको एक बार रात में और सुबह भी पढ़ लिया और उसको फिर सुनाया और सबने कहा बहुत अच्छी सुनाई और हम वहां रुक गए। जो पढ़ रहे हैं शब्द शब्द अंदर समा जाए, वाक्य वाक्य का स्वरूप हम बनते जाए पढ़ते पढ़ते ही। अशरीरीपन की दो विधियां है, एक है योग, दूसरा है ज्ञान। योग से जो ऊंची अवस्था प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान से भी वही अवस्था प्राप्त की जा सकती है, वही अशरीरीपन। ज्ञान में मगन होते हैं। ज्ञान सरोवर में संत सम्मेलन में एक जस्टिस आए थे, चीफ जस्टिस कहीं से, जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने जो शास्त्र लिखे अगर उसको समझना है तो उनकी जो अवस्था थी लिखने की उसी अवस्था में स्थित होकर उसको समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। शिव बाबा इधर है, स्पीकर बहुत ऊपर बैठा है, ऑडियंस नीचे है व्यक्त में, और अव्यक्त में वो कह रहा है और उसके महावाक्य है सारी अव्यक्त मुरलिया, साकार मुरलिया, और हम अपनी व्यक्त स्थिति में उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमको सिखाना है, समझाना है, पढ़ के सुनाना है, और जिस दिन पढ़ के सुनाना है उस दिन और ज्यादा अटेंशन से पढ़ रहे, जिस दिन नहीं पढ़ना है, कोई दूसरी बहन पढ़ने वाली है, उस दिन ढीला ढाला है, पढ़ा तो पढ़ा, कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे उसके ऊपर। श्रीमत तो पालन हो रही है पर सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से श्रीमत को जैसा करना है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके। तो ज्ञान अर्थात मनन, ज्ञान अर्थात चिंतन, ज्ञान अर्थात अध्ययन, ज्ञान अर्थात आपस में चर्चा। जो भी बहनें सेवा केंद्र पर रहती है रात को सोने से पहले कम से कम दो बहनें मिलकर जो सुबह मुरली चली उस पर डिस्कस करें। ये जो पॉइंट थी एकदम नई थी, ये जो बात आज बाबा ने कह दी आज तक कभी नहीं कही थी, ये हमारे मुख से चर्चा होनी चाहिए ज्ञान की। क्लासरूम में जो होता है वो अलग होता है, वहां एक स्पीकर होता है, यहाँ स्पीकर नहीं है, कोई भाषण नहीं दे रहा है एक दूसरे को, डिस्कशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये अगर होगा तो दिन भर में जो डिस्टर्बेंसेस हलचल जो है वो रात में इससे ठीक होगा। हम लोगों की जो ओपीडी है हॉस्पिटल में, दिन भर पेशेंट्स चलते हैं, रात में वो क्लासरूम बन जाती है। वहां पर हॉस्पिटल के जो भाई बहने हैं वो लोग आते हैं, सब बैठते हैं और सुबह जो मुरली चली उस पर डिस्कशन चलता है एक घंटा। बहुत कभी कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग भयंकर डिस्कशन चलते हैं, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों वो क्यों, ऐसा क्यों कहा वैसा क्यों कहा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही कह दिया है, बहुत सारी बातें। तो चर्चा होनी चाहिए, कम से कम 15 मिनट। चर्चा के लिए दो लोग चाहिए बस, बहुत बड़े ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, पर होनी चाहिए जरूर। और बहुत सारे सेवा केंद्रों पर ऐसा होता है जहां पर कन्याएं भी बहुत रहती, हमने देखा वो लोग रात में बैठते हैं और वो लोग बैठकर चर्चा करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, होमवर्क दिया जाता है। ये इंटरनल, बाहर वाले नहीं होते इसमें, केवल अंदर वाले निवासी जो है उनके बीच। तो ये ज्ञान अर्थात चिंतन, मनन, अध्ययन, सेल्फ स्टडी, जो मुरली चल रही है या जो हम सुनाने वाले हो उसमें, और एक चीज, हमें वो याद रहे, हमें वो याद रहे, अपनी मेमोरी पावर भी बढ़ानी है। हम तो ये कहते हैं कि 40 मिनट्स में वो पढ़ के हो जाए मुरली बाजू में, अब पूरी रिवाइज 20 मिनट में, पर उसके लिए जो स्पीकर है उसको वो पूरा पता चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वालों से कई गुना ज्यादा है। एक बार पढ़ लिया और दो बार पढ़ लिया और तीन बार पढ़ लिया इससे नहीं होगा। पढ़ना, ये जो पॉइंट आई है बीच में इस पर क्या चर्चा होगी, ये जो पॉइंट बीच में आ रही है इस पर कौन से उदाहरण दिए जाए। हमने एक बहन की मुरली देखी थी, वो सेंटर के एक सेंटर पर गए थे, वो जो मुरली थी बाजू की जो लाइन थी पूरा भरा हुआ था उसके छोटे 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 नोट्स, जिस दिन उसको मुरली सुनानी थी, यहां पर ये, यहां पर वो, वहां वो, इसका ये अर्थ, उसका वो अर्थ, इस पर ये टॉपिक, उस पर वो टॉपिक निकल सकता है, ये पैराग्राफ में ये कहा गया है, पूरा भरा हुआ था मुरली। तो ज्ञान पर मेहनत करनी है तब ये खजाना अंदर जमा होगा, तब हमें अपने भी प्रश्नों के उत्तर वहां से मिलेंगे। खाली सुनाने से उत्तर नहीं मिलता है या एक बार पढ़ लिया हो गया, और कुछ कुछ बातें वहां से उठा लेना है और याद कर लेना है। और जैसे जैसे हम ज्यादा करते जाएंगे ये, एक बार पढ़ेंगे और याद होगा, फिर धीरे धीरे, फिर ऐसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। एक है ऐसे ऐसे पढ़ना, एक है ऐसे पढ़ना, शार्प करना है अपने इंटेलेक्ट को। जैसे वो उदाहरण दिया जाता है, स्टीफन कावी नाम का एक ऑथर है, 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उन्होंने कहानी लिखी, एक लकड़हारा है जिसको नौकरी मिल गई, बहुत खुश हुआ, इतना उमंग उत्साह से भरा हुआ है, मैनेजर के पास जाता है और उसको मैनेजर काम देता है कि आज तुम्हें जंगल की जितने झाड़ काट सको काटो। वो इतना उत्साह होता है कि पहले दिन 18 झाड़ काट देता है और इतनी उसको खुशी होती है, मैनेजर भी खुश होता है, ऐसा लकड़हारा, ऐसा वुड कटर मिला। दूसरे दिन और उसको उमंग उत्साह ज्यादा आता है, पर वो केवल 16 झाड़ काटता है, क्यों, पर उमंग उत्साह आज तो बहुत ज्यादा है पर झाड़ आज 16 ही काटे। दूसरे दिन सोचता है ऐसा क्यों हुआ, चलो जो हुआ, पर अगले दिन मैं और ज्यादा काटूंगा। अगले दिन आता है 12 ही काटता है। तो अभी अंदर से कुछ गड़बड़ हलचल होने लगती है, डिप्रेस होने लगता है, ये क्या हो रहा है, मेरा उमंग उत्साह तो बहुत बढ़ रहा है पर मैं झाड़ कम क्यों काट रहा हूं। अगला दिन आता है 8 ही झाड़ काटता है। उसको लगता है अब तो कुछ करना पड़ेगा, शक्ति तो बहुत है फिर भी झाड़ कम क्यों कट रहे। वो अपने मालिक के पास जाता है, मालिक कहता है, मालिक को बताता है अपनी व्यथा, मालिक कहता है तुमने कुल्हाड़ी को की धार तेज कब की थी। वो कहता है हु हैज द टाइम, टाइम किसको है कुल्हाड़ी की धार तेज करने को, मुझे तो झाड़ काटने हैं। धार तेज करना अर्थात बुद्धि की धार तेज करना, उसमें हर दिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ कुछ याद करते, मेमोराइज करते पोएट्री को, हर दिन कुछ ना कुछ मेमोराइज करना है, क्योंकि मेमोरी जो है वो मसल की तरह है, उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना डल हो जाएगी वो, उसको काम देना पड़ता है और उसको काम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आराम चाहिए। जैसे कोई मुरली सुना रहा है, जाके बैठो चिंतन सोचो सुन लो, आरामदायी काम है सुनना, एकदम आराम का काम है। उससे थोड़ा मुश्किल काम है पढ़ के सुनाना, उसमें थोड़ा अटेंशन ज्यादा चाहिए। उससे थोड़ा ऊपर का काम है पढ़ते पढ़ते उदाहरण देना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा काम। उससे ऊपर का काम है कोई टॉपिक पे क्लास ही करा देना, क्योंकि इसमें तो हाथ में कुछ भी नहीं है, इधर उधर से कहां से ढूंढे। उसके भी ऊपर का काम है कुछ मेमोराइज कर लेना। तो मेमोरी मेमोराइज करने की आदत चली गई है, बचपन में करते थे पोएट्री ट्विंकल ट्विंकल, बाद में कहां चली गई पता नहीं। कम से कम एक ही बात हम कहेंगे, वरदान जो है रोज का उसको मेमोराइज कर लेना, पूरा के पूरा शब्दशः वैसे के वैसे, जरा भी इधर से उधर ना हो। ये किस लिए? इसलिए नहीं कि मेमोरी करने के बाद हम उसका स्वरूप बन जाएंगे, ना ना, मेंटल ट्रेनिंग के लिए, मेंटल ड्रिल के लिए। तीन प्रकार की ड्रिल है, फिजिकल ड्रिल, मेंटल ड्रिल और स्पिरिचुअल ड्रिल। स्पिरिचुअल ड्रिल हम जानते हैं, शरीर से बाहर निकलना आना, अशरीरी बनना। मेंटल ड्रिल है ब्रेन को काम देना, सम सॉल्व करना कोई मैथमेटिक्स का, या याद करना चीजों को फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए। जैसे उसकी ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, ये कमरा है, आंख बंद कर लो और इस कमरे में कौन कौन सी वस्तु है वो याद करो, ये है मेंटल ड्रिल। मेडिकल की बहुत सारी केसेस इस तरह हल की जाती है, शार्प मेमोरी से। जैसे वो शेरलॉक होम्स दिखाते हैं, डिटेक्टिव को बहुत ज्यादा चाहिए सारी चीजें, कनेक्टिंग द डॉट्स, सारे एविडेंसेस को कनेक्ट करता है वो, सोचता है। उसमें दिखाया एक बार उसको आंख में पट्टी बांधकर कुछ लोग लेके जाते हैं, आंख में पट्टी बांधकर उस जासूस को, शेरलॉक होम्स को लेके जाते हैं और एक ऑफिस में उसकी पट्टी खोली जाती है और सामने एक व्यक्ति उसके बैठा है। वो पूछता है, अब बताओ तुम कहां बैठे हो? तो वो अपना बताना चालू करता है कि जहां मुझे पट्टी बांधी थी उसके बाद में एक टांगे में बिठाया गया था, फिर वहां से हम गुजरे, फिर वहां पर एक सुगंध आई और वो सुगंध उसी बेकरी की है, इसका मतलब ये वो फला मार गए। फिर वहां से हम टर्न किए, फिर वहां से एक घंटी की आवाज आई, वो घंटी उस चर्च की थी, मतलब वो मार्ग वहां से गया। एक 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 चीज बताने लगता है वो। फिर हम एक जगह उतरे, फिर हम नीचे आए, फिर कुछ और आवाजें आई, वो आवाजें केवल वहीं होती है। फिर वो अंदर आया, मतलब ये बिल्डिंग वो है, वो बिल्डिंग का भी नाम बताता है, और अब मैं यहां बैठा हूं। और रही आपकी बात, वो जो पूछता है तो उसको यहां से बाल होते हैं, इंग्लिश में उसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं मेडिकल में, जिनको कान में बाल आते हैं ना, तो आपका बेटा जो है उसको ये बाल है और ये कंडीशन परंपरागत चलती है और आपका फेस उससे मिलता है, तो इसका मतलब आप उसके बेटे हो और उसके पिता हो। और रही बात आपके पोजीशन की, तो उसके गले में कुछ लटका होता है, तो इस कंपनी की, ये फला कंपनी के तुम चेयरमैन हो, सारा बता देता है। शार्प ऑब्जर्वेशन, ये मेंटल ड्रिल है। याद रखना चीजों को, कम से कम एक ही चीज याद रखना, वरदान। और याद रखने की विधि है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, पार्टीशन कर देना उसके। जैसे आज का वरदान, तीन अवज्ञा है, पहला अमृत वेला, दूसरा दुख न लेना, तीसरा रोब। ये अवज्ञाएं करोगे तो मन भारी होगा। और तुम्हें कौन सा चित्र खींचना है? चरित्रवान का चित्र खींचना है, तो क्या बन जाओगे? समर्थ चरित्रवान बन जाओगे। तो ये वरदान है, मुरली में आया, इसके टुकड़े करना है। कौन सी तीन बातें? पहला, जैसे वो अमृत वेले का साइलेंस है, तो इसमें निद्रा के साइलेंस में चले जाते, विधि से सिद्धि रिधि नहीं होता है अमृत वेला, ये पहली अवज्ञा है। दूसरा, दुख ले लेते, दुख देते तो नहीं, तीसरा रोप करते, क्रोध नहीं करते, तीन अवज्ञा है। तो हमने एक पॉइंट अपने डायरी में ये चार्ट बनाया, थ्री अवज्ञा, ब्रीच या वायलेंस ऑफ प्रिंसिपल, एक एरो आगे, और वहां लिखा एक दूसरे बॉक्स में ये होगा तो मन भारी होगा, फिर और आगे लिखा फिर वो चित्र नहीं खींच सकेंगे, और फिर समर्थ चरित्रवान, एक ही वरदान को टुकड़े टुकड़े कर देना, पार्टीशन कर देना, ताकि हम उसको समझ सके, याद रख सके। नहीं तो एक विधि है कि हमने उसको पढ़ लिया और सुना दिया, खत्म। पर सारी मुरली सुनाते समय उस वरदान को बीच बीच में रिवाइज करा देना, और बिना ये बताए कि ये वरदान में है, और वही सारे शब्दों के साथ। इससे उनका कितना फायदा होगा वो दूसरी बात है। ये हम अपनी ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं कि मेंटल ड्रिल होती रहे, माइंड जो है ना उसको, जैसे कोई सम दिया गया 12 × 6 × 7, ये बिल्कुल उसको नहीं चाहिए, ऐसे काम बिल्कुल उसको पसंद नहीं जिसमें मेहनत है, काम है। पर उसको जबरदस्ती दोगे तो वो ट्रेन होगा उस तरह से। तो ज्ञान अर्थात चिंतन, ज्ञान अर्थात तर्क, ज्ञान अर्थात नवीनता, ज्ञान अर्थात स्वरूप, ज्ञान अर्थात गहराई में जाना, ज्ञान अर्थात मेमोराइजेशन, ये सारी चीजें उसमें आती है। ये पहला खजाना। दूसरा है गुण। तो जो चीज हमने ज्ञान के साथ की वही गुणों के साथ करनी है। गुणों की लिस्ट हमको पता है, व्यक्तिगत रूप से हम रोज एक गुण अपने लिए ले ले और उसके ऊपर लिखे कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के क्या फायदे हैं? ये भी लिखना कि नुकसान क्या है। जैसे एक सेंटर के बहन ने पूछा था, ये हाजी जो कहना है ये हमेशा कहना चाहिए या कभी कभी अपने बड़ों को? मोस्ट सेलिब्रेटेड श्रीमत हाजी, सबसे ज्यादा क्लासेस सब होता है इसमें, आज्ञाकारिता। पर क्या ऐसी भी स्थितियां हो सकती है जिसमें नाजी कहना चाहिए और वो ज्यादा फायदेमंद है? ऐसा प्रश्न पूछा था। और ऐसी कंडीशंस है नाजी वाली, नाजी के फायदे और नाजी कहां कहां करें। और बड़ी अच्छी योग युक्त स्टेज में, ताकि उससे श्रीमत का उल्लंघन भी ना हो। क्योंकि किसी को हमने काम दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट को हमने सेवा दी और उसको कहा ये कर लेना, उसने कहा हाँ कर लूंगा हाँ जी, हम भी खुश हो गए, और उसने की नहीं, और उसको पहले ही पता था मैं ये नहीं करने वाला हूं, तो हम किसी और को दे देते ना, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया, उसके हाँ जी की वजह से। पहले ही बोल देना चाहिए था नहीं करना है, नहीं करूंगा मैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरी दिनचर्या ही ऐसी है, फिर भी वो कह देते तो ये उसने श्रीमत का तो पालन किया पर किया नहीं पूरा, तो नुकसान ही हो गया इससे। तो इंग्लिश में एक बुक है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, हां ना बोलो जब तुम्हें ना कहना है। पर ये बहुत सूक्ष्म विषय है और हरेक का व्यक्तिगत रूप से इसका उत्तर दिया जा सकता है, तो हरेक ने सोचना है। तो ये तो एक उदाहरण दिया हमने, गुण, कोई भी गुण उठाओ उसके ऊपर सोचो डेली एक गुण, और वो गुण मुरली से ले लेना है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उठाना है उसको। जैसे कल की जो मुरली चलने वाली है, सोचा और किया, तुरंत दान महापुण्य, यह है प्रत्यक्ष फल, वो भविष्य का फल नहीं, करेंगे देखेंगे सोचेंगे सब आएंगे तब देखेंगे, सोचा और किया। तो ये एक श्रीमत है इंस्टेंट करने की, टाल मटोल ना करना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, ये वाली। तो गुण का चिंतन और उसका स्वरूप। तीसरा है शक्ति। शक्ति हमें पता है, एक बहन ने हमको शक्तियों की लिस्ट दी थी, 60 से ऊपर शक्तियां थी उसमें, ये 8 छोड़कर रूटीन वाली, समाने की शक्ति वो नहीं जो मुरलियों में आती है, सत्यता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, इस तरह से। तो शक्तियों का चिंतन, परिवर्तन की शक्ति, ऐसी अलग अलग शक्तियां हैं। तो शक्तियों का चिंतन करना, जैसे अभी एक आपको दिया शक्तियों की लिस्ट निकालो। हमने एक जगह एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें गुणों की लिस्ट निकालने के लिए कहा था, वो 36 गुण छोड़कर, वो नहीं दूसरे। तो बहुत सारी कन्याएं थी, किसी ने 150 लिस्ट निकाली थी एक कन्या ने, वो 36 जिसमें नहीं थे वो छोड़कर। कितनी क्षमता है और कितनी चिंतन है सबका, आश्चर्यकारक है और हर एक का है, हम भी कर सकते हैं। रोज नया कुछ लिखना, जैसे लास्ट संडे की मुरली थी, क्या छोड़ा क्या पाया। हमने उधर पांडव भवन में क्लास में भी बताया था, एक भाई ने 160 पॉइंट्स निकाल के भेजे थे, क्या छोड़ा क्या पाया। एक बहन ने 150 पॉइंट लिख के भेजे थे, क्या छोड़ा क्या पाया। भौतिकता छोड़ी, अलौकिकता पाई, गागर छोड़ा सागर पाया, इस तरह की सब राइमिंग के साथ। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात चिंतन चालू रहे, नहीं तो बुद्धि मन विचार नीचे आते और झगड़े, नीचे संघर्ष, संस्कारों की टकराव, इसने ये किया उसने वो किया, मधुबन में ये हुआ, ये सेंटर पे वो हुआ, वो सेंटर पे वो हुआ, ये बहन ये करती है, वो भाई वो करता है, ये चालू रहता है, इसका कोई अंत ही नहीं है। सुनहरी टोली जादी जानकी कहती है, आपस में बैठ के चर्चा करना कहां क्या हो रहा है। ब्राह्मण संसार समाचार, आज के ब्राह्मण संसार समाचार, फला सेंटर पर ये हुआ, वहां ये हुआ, यहां ये हुआ, आज के समाचार पूरा हुआ, आप कल फिर मिलेंगे इसी टाइम नई खबरों के साथ। और जिसे बिल्कुल खबरें पता नहीं वो मूर्ख, कोई एक चक्कर कभी कभी ऊपर लगाता है और सारी एक दिन में खबरें लेके चले जाता है, ज्ञान सरोवर पांडव भवन हॉस्पिटल, एक ही दिन में। और हम जो वहां बैठते हैं हमें कोई पता नहीं बाजू में क्या चालू है, कौन किधर था और कौन किधर चला गया, ये व्यर्थ चिंतन है। पर चिंतन पतन की जड़, हमें क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू। तुम अपने काम से काम रखो, दूसरे का क्या हुआ, वो बहन अभी तक मधुबन में क्या कर रही है, तुमको क्या करना है, शांति से बैठो, एक दूसरे को देखना, कमेंट्स करना गिराता है आत्मा को नीचे, इसके लिए इससे परे। तो ज्ञान गुण शक्तियां, शक्ति पर चिंतन, फिर है संकल्प, अपने विचारों को श्रेष्ठ करते जाना है, उसके लिए स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा, अध्ययन को बढ़ाना पड़ेगा, खाली मुरली इज नॉट इनफ। और मुरली भी, मुरली इज नॉट इनफ, अध्ययन जो है, यज्ञ का बहुत सारा लिटरेचर है, जगदीश भाई की लिखी हुई बुक्स है, हमारी अपनी व्यक्तिगत एक सीरीज चालू हो, जैसे स्पार्क में आपने देखा होगा छोटी छोटी बुक से, अपनी एक व्यक्तिगत सीरीज चालू रखनी है। जैसे सुबह 15 मिनट 10 मिनट हम कुछ पढ़ेंगे, रात को वही रिवाइज करेंगे, ये अपनी व्यक्तिगत एक सीरीज, कोई भी किताब ले लो, छोटी छोटी बुक्स है स्पार्क्स की, क्योंकि पूरी मुरली पढ़ना मतलब 8 पेज की होती है, अव्यक्त वाणी साकार के अलावा हर दिन मुश्किल होता है, इसके लिए हम ये सोचते हैं कि छोटी छोटी स्पार्क की जो किताब है, संकलन है, जैसे टीचर, ब्राह्मण परिवार, सत्यता, धर्मराज, पश्चाताप, बेहद का वैराग, ज्वालामुखी योग, फुल स्टॉप, बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स है, वो अपनी अपनी एक सीरीज चालू कर दें। तो गुण शक्ति, फिर बताया संकल्प, फिर है समय, टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक व्यक्तिगत प्रश्न हमसे पूछते हैं लोग कि आपने ये चिंतन सब कहां किया, कब किया। ओपीडी में आते हैं और देखते हैं इतने पेशेंट, सबसे ज्यादा पेशेंट तो यही है, फिर ये चिंतन कब करते हो। इसका एक ही आंसर हम देते हैं, व्यक्तिगत रूप से कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं किया। किसी के साथ बैठ गए और चर्चाएं चालू, किसी के साथ चले गए और भोजन बनाना और ये सब करना, और इधर घूम रहे और उधर घूम रहे। केवल तीन ही चीजों में हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, पेशेंट, ज्ञान, योग, बस। ये हो गया डिटैच, फिर किसी से कोई कुछ करना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो मौन और वो एकांत, उसमें डूब जाते हैं। टाइम एक ऐसी चीज है कि हमें वेस्ट नहीं करना है। सारा डिजिटल बहुत टाइम वेस्ट करता है, किसी भी कोई भी ग्रुप में कहीं पर भी हम नहीं है। अगर कोई डालता है तो एग्जिट, किसी भी ग्रुप में नहीं, फिर भी लोग भेजना चालू रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृतवेला, गुड नाइट, हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे, हैप्पी श्राद्ध, किसी ने भेजा था हैप्पी श्राद्ध, सब भेजते रहते जोक्स। हमको जो मैसेजेस आते हैं आईसीयू से आते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में। एक बार एक मैसेज आया सुबह सुबह, हमको लगा कोई पेशेंट आ गया, देख रहा हूं तो पति पत्नी का जोक, और भेजने वाले तथा कथित बीके ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, सुबह 4 बजे योग के समय। ये सब वेस्ट है, इन सबसे दलदल से बाहर निकलना है। जो काम का है बस उसी को रखना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारा टाइम सफल हो, चिंतन में, मनन में, अध्ययन में। अगला, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, खुशी। छठवां खजाना है खुशी। यदि भगवान के यज्ञ में जीवन समर्पित करने के बाद भी दुखी है तो क्या कहेंगे? यज्ञ की वेदिका पर अपना सर्वस्व स्वाहा करने के बाद भी हम दुखी है तो क्या कहेंगे? हिसाब किताब की अपनी यात्रा है, वो होता रहे, हम अप्रभावित। जैसे जीवन की यात्रा है जन्म मृत्यु, हिसाब किताब की भी यात्रा है। ए पॉइंट से शुरू हुई, वो कभी ना कभी एंड होगी, कभी ना कभी तो एंड होगी। हिसाब किताब एंड होगा वो, ये या वो व्यक्ति। किसी चर्च में पादरी ने पूछा, क्या इस चर्च में ऐसा कोई है जिसके हृदय में जरा भी घृणा नहीं है? तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, हजार की सभा। बहुत दुखी हुआ पादरी कि भगवान कैसे इस चर्च में अवतरित होंगे जहां सब घृणा से भरे हुए लोग हैं। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, 100 वर्ष के ऊपर की उम्र जिसकी थी, तो उसको बहुत खुशी हुई, वाह कम से कम एक तो निकला ऐसा कि जो घृणा से मुक्त है, तो यहां भगवान आ सकते हैं। तो उसने बताया कि आप बताओ अपना अनुभव, कैसे आप घृणा से मुक्त हुए? तो उसने कहा, जिनसे मैं घृणा करता था सब मर गए, अब किससे घृणा करूं? जो जो मेरे दुश्मन थे सबने शरीर छोड़ दिया, जो मुझे सताने वाले थे सब के सब चले गए, अब कोई है ही नहीं घृणा करने के लिए, इसलिए मैं घृणा से मुक्त हूं। ऐसी वाली घृणा। तो खुशी को नहीं छोड़ना है, अपने व्यक्तिगत तौर के लिए खुशी की कुछ पॉइंट्स रखनी है, याद करने, खुशी के अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव, वरिष्ठ भाई बहनों के साथ के अनुभव, कुंजी है वो, खजाना है। और फिर खुशी के बाद नेक्स्ट पवित्रता, प्यूरिटी बहुत बड़ा खजाना है। सब कुछ चला जाए ये नहीं जाए, प्यूरिटी सबसे बड़ा खजाना है। जगदीश भाई जी हमेशा उदाहरण देते हैं कन्या का, जो पानी भर रही है, कुमार आता है, वो कहता है मुझे प्यास लगी पानी दो, वो कहते हैं मैं पानी दूंगी पर अंग से अंग ना लगे, तो अपनी घाघर से उसको पानी देती है, वो कहता है पक्का वादा, और वो पानी पीता है और चला जाता है। थोड़े देर दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है, उनके माँ बाप तय कर देते हैं और उनको नहीं बताते। शादी के बाद आमने सामने दोनों आते हैं, पहला ही दिन, और आमने सामने दोनों आते हैं, तो वो कन्या उससे कहती अपना वादा याद रखना। क्या कहती है उसको? अपना वादा याद रखना, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसी पवित्रता की तपस्या, यही हमारे सेवा केंद्र की नींव है। जहां प्यूरिटी ज्यादा होगी वहां अपने आप सेवाएं होगी, जहां प्यूरिटी कम होगी सेवाएं कम होगी। सूक्ष्म में आधार केवल प्यूरिटी है और कुछ नहीं। बाहर का मीडिया, बाहर का प्रोपोगंडा, बाहर का जितने प्रोग्राम करने हैं, इस गेस्ट को बुलाओ, स्पीकर को बुलाओ, ये प्रोग्राम 1 लाख 2 लाख यहां है, सब बाहर। मेन आधार प्यूरिटी है। अगला खजाना पुण्य कर्म। हमारे कर्म महान कर्म हो। किसी स्टूडेंट को हमारे कर्मों को देखकर ऐसी प्रेरणा ना आए कि हम ज्ञान छोड़कर चले जाएं। हमारी चलन को देखकर उनको ये ना लगे कि ये भी ऐसी है। किसी कुमार को ये ना लगे कि हम जब आए थे तो ये देवियां लगती थी, नए नए आए, और अभी तो ये वही है जो हम है, हमारी कैटेगरी की है। वो रॉयल्टी, वो प्यूरिटी हमारे कर्म श्रेष्ठ। और लास्ट खजाना है दुआओं का खजाना। ऐसे कर्म हो कि असंख्य आत्माओं की दुआएं मिले, इसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण, सबका कल्याण, ढेर दुआएं कमानी है। तो ये खजानों के लिए मास्टर चाबी बता रहे हैं मेरा बाबा। मास्टर की है बाबा, मास्टर की है एक बाबा दूसरा ना कोई, मास्टर की है मन मना भाव, मास्टर की है ओम शांति, मास्टर की है हम सो सो हम, मास्टर की है मध्याजी पव, मास्टर की है मामे कम याद करो। ये सारी कीज है, एक ही की है, याने कहो हम और उसके बीच कोई और ना है। हमारी शादी उससे हुई है, पतिव्रता पवित्रता ये दो व्रत है। अपने पति को छोड़कर और किसी को पति नहीं बना देना मनसा से भी, साथी नहीं बना देना मनसा से भी, साजन नहीं बना देना मनसा से भी, दोस्त नहीं बना देना मनसा से भी, फ्रेंडशिप नहीं कर लेना मनसा में भी। एकमात्र वही आधार है, ये सारे आधार सारे सब टूटने वाले हैं। तो ऐसा ये मंत्र और ये सारे खजाने याद रखना, खजानों को बढ़ाते जाना। अभी हमें एक दूसरा टॉपिक भी लेना है, वो तो बड़ा टॉपिक है। टॉपिक है विघ्न लगन और मगन। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक।